जितना आनंद होता है
एक साधक को भी हरिनाम करने में और भगवान की कथाओं के सुनने में उसे कोटि गुना आनंद होता है। लादनी शक्ति की कृपा बिना परमानंद प्राप्ति में अधिकार नहीं होता। हम लोगों को अभी परमानंद की प्राप्ति में कुछ व्यवधान है, क्यों? लादनी शक्ति की अभी पूर्ण कृपा नहीं है, है कुछ जरूर किंतु पूर्ण नहीं है। प्रणाली कैसी है? दीनता पूर्वक रागात्मक प्रजवासियों के भाव को देखने सुनने से जब उसके हृदय में उस भाव को प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न हो जाए तब श्रीमती राधिका की सखियों में से किसी एक सखी या उनकी अनुचरी किसी मंजरी का चरणाश्रय कर उनकी सेवा करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी स्वयं इसको लिख रहे हैं। यदि ऐसा लोभ हो तो राधिका जी की किसी सखी का अथवा उनकी अनुगत किंकरी मंजरियों का भाव से को लाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, अनुगत में भजन करना चाहिए। इस प्रकार सेवा करते करते जैसे उसकी योग्यता बढ़ेगी उतने ही रूप में सेवा अधिकार बढ़ता जाता है। सखियों के कृपा से ही राधिका जी की कृपा प्राप्त होती है। यह कृपा जितनी अधिक प्राप्त होगी लादनी शक्ति भी अधिक रूप में उसके अंदर में आएगी। जो लोग इस राज्य में निष्पक्षी विलास को स्वीकार नहीं करते वे सर्वशक्तिमान रस स्वरूप परम तत्व को पूर्णता मानने के दोषी होते। जो लोग कृष्ण के विलास को नहीं मानते हैं वे लोग ब्रह्म को ही अपना सर्वस्व समझ लेते हैं, अपहृत होकर के प्रेम सेवा से वंचित हो जाते हैं। साधक साथी साधक का जब तक अपने में संसारी जड़ पुरुष का भी मान रहता है मैं जड़ पुरुष हूं जड़ स्त्री हूं तब तक ब्रज के भाव में उसका प्रवेश नहीं होता, शिवान अधिकार नहीं है। जड़ स्त्री या पुरुष देह से किसी प्रकार का संबंध नहीं उससे है, केवल अणु चैतन्य शुद्ध जी रूप में जो स्त्री भाव होता है वही उसके लिए उपयोगी है। शुद्ध स्वरूप में ये शरीर से मतलब कुछ नहीं। साधन के समय में जड़ देहगत स्त्री पुरुष का संबंध मन में लाने से साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए ये शरीर को स्त्री पुरुष की भावना मत करो, ऐसे भावना मत, वो अपने आप आएगा भजन करते करते। ऐसे लोगों से दूर रह करके श्रीमती राधिका के चरण कमलों में अनन्य आश्रित रूपानुदीय रसिक भक्त के अनुगत होकर के जैसे रूप रघुनाथ गोस्वामी ने प्रार्थना की है कि गोपियों की सेवा मिले, राधिका जी कृपा करें, ऐसे ही प्रार्थना विलाप कुष्मांजलि साधकों के लिए ये थी। अब मथुरस के रागानुदीय भजन में परस्पर कैसा संबंध होना चाहिए राधा कृष्ण के प्रति ये बतला रहे हैं। मदीसा नाथत्ते ब्रजपिपिन चंद्रम ब्रजवनेश्वरी तंग नाथत्ते तद अतुल सखित्ते तु ललिता दिशाखं शिक्षा वितरण गुरुत्व प्रिय सरो गिरंदो तत्प्रेक्षा ललित रति दत्तो दत्ते स्मरमन। हे मन तुम वृंदावन चंद्र कृष्ण को अपना आराध्य मत मानो, किसको मानो? राधिका के प्राणनाथ के रूप में कृष्ण को देखो, ये हमारे राधिका जी के प्राणनाथ हैं। हमारे प्राणनाथ अभी मत देखो, हमारी आराध्या कौन है? श्रीमती राधिका जी, इसलिए भोग नहीं आएगा उसमें भोग विलास के बाद। वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका को मेरी स्वामिनी के रूप में देखो, अपनी स्वामिनी के रूप में। ललिता जी को राधा जी की अतुलनीय सखी के रूप में देखो। विशाखा को जुगल सेवा की परिपाटी बतलाने वाली शिक्षा गुरु के रूप में देखो। राधा कुंड और गिरिराज को कैसे देखो? ये दोनों को राधा कृष्ण का दर्शन कराने वाले और उनके चरण कमलों में मनोहर रति को देने वाले हैं ऐसा समझो। गिरिराज जी और राधा कुंड ये समझो ये कृष्ण के प्रेम को देने वाले हैं, इस रूप में उनको देखो। विशाखा जी को शिक्षा गुरु, ललिता जी को राधा जी की प्राण प्रस्थ सखी, प्रिय नर्म सखी के रूप में देखो। अब इसी चीज को कहते हैं ब्रज विपिन चंद्रम, कृष्ण को कैसे स्मरण करेंगे। नव जलधार वर्णम चंपकोद्भासी कर्णम विकसित नलिनाशम विस्फुरण मंदास्यम कनक रुचि दुकूलम चाग्बरहावचूलम किम अपने खिल सारम नौमी गोपी कुमारम। वेणु कणं तमर बिंद दलायताक्षम बरहावतंसम अचितांबुज सुंदरांग कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं। आलोल चंद्र लसद वन माल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय खेदी कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि। ऐसे कृष्ण का स्मरण करो। फिर कहते हैं मुखजित सरदेन्दु, अपने मुख से सरदेन्दु को, पूर्णिमा के चंद को जीत लिया है सरदेन्दु। केली लावण्य सिंधु, केली लावण्य के ये सिंधु हैं, कर भी नहीं तो कंदु कंदु बल्लवी प्राण बंधु, कर भी नहीं तो कंदु गेंद रखा है फूलों का गेंद, हाथ में कभी उछाल रहे हैं उसको, नचा रहे हैं कमल के फूल को न? करबे और बल्लभी प्राण बंधु, बल्लभी मैंने गोपियां, गोपियों में भी राधिका जी उनके प्राण बंधु। बपु रूपक स्थित वेणु रेणु कक्ष निक्षिप्त वेणु, बपु उपस्थित रेणु गोचारण के लिए जा रहे हैं, गऊ के खूर से उत्थित जो खूर से धूली उड़ रही है उसको मालूम पाउडर के समान में अपने अंगों पर केसों पर चारों तरफ में लगा रखा है। केस कहते हैं घुंघराले अलके मानो भ्रमर चारों तरफ से उसको घेरे हुए ऐसा। कक्ष निक्षिप्त वेणु और अपने कक्ष में वेणु रखे हैं, वचन बसक धेनु गायों को अपने वश में रखते हैं, कहेंगे क्या धीरे धीरे गैया धीरे हो गई, निरी निरी पानी में उतर गई, चू चू पानी पीने लग गई, अब फिर तिरी तिरी आ जाओ निकट में और फिर चल दिया घर को, जैसा कहते हैं वैसा गैया सुनती हैं। बंसी के द्वारा सब गायों को संभाल करके ले आते हैं। बचन बसक धेनो पाप मानंद हे नंद सुमु आप मेरी रक्षा करें। फिर कहते हैं कृष्ण से अत्यंत दीनहीन होकर के ब्रिजयमयी दंडम दीन बंधों गया गतरिया न भवत्ता काचित अन्या ममास्ति निपट सतकोटि निर्भरं वा नवाम्भा सदा तदपि किल पयोद तूयते चातक। कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो जन्म जन्म का अपराधी हूँ दोषी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए या दंड क्षमा कर दीजिए, इसके लिए मेरा कोई निहोरा नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, आपके बिना आपके सिवा कोई गति नहीं है। जैसे बच्चा छोटा सा मैया उसे किसी कारण से मार दिया किंतु बच्चा मैया मैया करके उसी की गोदी में जाता है, ठीक वैसे ही आपके अतिरिक्त हमारी गति नहीं है, हम तो आपके दया पर चातक जैसी दृष्टि लगा करके हैं, चाहे नेक सुंदर स्वाति नक्षत्र का पानी बरसा करके उसको तृप्त कर दे या भयंकर वज्रपात से उसको मार डाले किंतु वो ऊपर ही देखता है नीचे नहीं देखता, ऐसे ही ये रघुनाथ दास गोस्वामी की प्राचीन आनंद भजन अतुलम सुनमतं दुष्करंग में नरक्तेन जलति हृदयं भक्ते लेशालसश्च विश्वदरिद्रि अवार्तवाकर्ण कारुण्य वीति आशा बिंदु क्षिपत इदम उपैत अंतरे हंत सत्य। कहते हैं जब प्राचीन लोगों का रूप सनातन का भजन देखता हूँ, प्रहलाद महाराज का भजन देखता हूँ पद्धति, हमारा हृदय निराशा से जलने लगता, अत्यंत निराश हो जाता हूँ। नरक्तेन जलति, हम लोग तो ऐसा कोई भजन ही नहीं कर रहे हैं, खाते पीते आनंद से घूम रहे हैं, कोई भजन पद्धति नहीं, किंतु बस एक आशा है। आशा क्या है? विश्वदरी की अभा सवा कर्ण कारुण्य भी की है, प्रभु आपकी हमने करुणा की कथा हमने सुनी है, विश्व भर में आपकी करुणा की छोटी छोटी बूंदें चारों तरफ में फैली हुई हैं। यदि उसकी एक किरण की कुछ भी हमारे ऊपर में गिर जाए तो हमारा जीवन धन्य। आशा बिंदु, यही हमारे लिए एक आशा। सब जगह आपकी करुणा है, यदि करुणा से स्पर्श हमारा हो जाए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राधिका जी को स्वामिनी जानना कैसे कहते हैं उसने बतलाया। अति उत्कटेन नितरंग विरहान ने, दास गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधिका जी से प्रार्थना करें, अत्यंत तो उत्कट विरह की दावाग्नि से मेरा हृदय जल रहा है। कोई दासी मैंने रघुनाथ दास को, हाँ स्वामी क्षमी है प्रणयी नगाढ़ आक्रम देने न विधुरा बिलपानी पद। मैं विलाप करते हुए प्रणय के साथ में मैं जो विलाप कर रही हूँ इसी की पुष्प माला गुज करके आपके चरणों में लगाऊंगी। हमारी प्रार्थना को आप सुनिए, विलाप को सुनिए। ललिता जी की कैसे, ललिता जी का अवसर है, ललिता जी की जो प्रार्थना है यं काम अपि ब्रजकुले विश्वभानु जाया प्रेक्षक पक्ष पद में अनिरुद्धमान सदस्य घटने पितात्मा। ये ललितास्त्र को भी साधक को प्रतिदिन करना चाहिए। ये जो दे रहे हैं गिरिराज जी की प्रार्थना, राधा कुंड की प्रार्थना, श्याम कुंड की और जो प्रार्थनाएं ललिता जी की ये दे रहे हैं, कृष्ण की, राधा जी की, ये सब करना चाहिए साधकों। कहते हैं कि यदि कोई ब्रज कुल में ब्रजभानु की जो जाया श्रीमती राधिका जी हैं उनके पक्ष में रह करके उनकी दासी बनना यदि कोई चाहता है और उसकी गंध भी ललिता जी को मिल जाए तो वो क्या करती हैं, शब्द सदिष्ट घटने न कृतार्थमानी, शब्द शब्द तुरंत ही उसके अभीष्ट को पूर्ण कर देती हैं, अर्थात उसको दासी बना करके छोड़ देती हैं। कृतार्थमानी उसका जीवन कृतार्थ हो। ललिता जी ऐसे पिताली हैं। विशाखा जी का तो स्तोत्र ही है अलग से, सभी एक दे रहे हैं। बलदेव विद्याभूषण ने ऐसा माना है, जमुना जी से अभिन्न माना है, विशाखो उरसी जा विष्णु जस्यं विष्णु जलात्मनि नित्यं निमज्जति प्रोक्तृत्या सांसौरी जमुना सुमा। विशाखा जी ही ये जमुना जी हैं। विष्णु जस्यं, वो विष्णु के जल के समान विष्णु जलात्मक रूप में विशाखा जी होकर के और जमुना जी के रूप में उन्होंने धारण किया है, ये विशाखा जी। इसलिए जो लोग बड़ी प्रीति के साथ में विशाखा जी की स्तुति स्तव करते हैं, उनकी प्रार्थना चाहते हैं, तो ऐसे रूपानुरूप भक्ति उसमें वृद्धि होती है। भ्रातुवंत समय भी पत्यारणी इत्यादि सब उनके श्लोक हैं, इसको साधक लोग पाठ करेंगे। ऐसे राधा कुंड के लिए, श्याम कुंड के लिए ये सब प्रार्थना करते हैं। विलाप पुष्पांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्षणमपि तव संगम न त्यजेत देवी समसी समवय स्वान्नर्म भूमि जगत्या इत्सुमुख विशाखे दर्शयित्वा मदीशां मम विरहतायां प्राण रक्षां कुरुस्व। हे सुमुखी विशाखे, हे सुंदरी विशाखे, मदीश्वरी श्रीमती राधिका जी तुम्हारी समवाय एक दिन में ही जन्म ग्रहण करने वाली, जिससे उन्होंने किया था उसी, और नाम रूप गुण वय इत्यादि उन्हीं के समान है, और तुम उनकी असंकोच रूप में उनके साथ में रहती है, छाया को भी कभी नहीं छोड़ने वाली तुम हो, इसलिए एक क्षण भी तुम्हारा संग नहीं छोड़ती है। मैं उनके विरह में व्याकुल हूँ, किनके, श्रीमती राधिका जी, तुम कृपा कर उनके चरण कमलों में दर्शन करा करके हमारे प्राणों को रक्षा करो। गोवर्धन के लिए। इस तरह से दशम श्लोक रतिं गौरी लीले अपि सपति सौंदर्य किरणई सती लक्ष्मी सत्या परिभवति सौभाग्य बलनई वशिकार चंद्रावली मुख ब्रज नमीन ब्रज सती क्षिपत्या राज्यांतांग हरिदयित राधा भजमन। सब शक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा कृष्ण की प्राप्ति कदापि संभव नहीं। हे मन, अन्याय सब में अशक्ति को छोड़ो और कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया श्रीमती राधिका का भजन करो, जो अपने सौंदर्य की किरणों से रति गौरी और लीला को भी संतप्त करती है। अतः तुम गौरी शंकर की शिवानी जी पार्वती जी नहीं कामदेव जी, और गौरी पार्वती जी और लीला लक्ष्मी जी अपने सौंदर्य से सबको दूर कर देती हैं। जो अपने सौभाग्य की समृद्धि से सती लक्ष्मी और सत्यभामा को भी पराभूत कर देती है एवं कृष्ण को वशीभूत करने वाले अपने गुणों से चंद्राली इत्यादि ब्रज की नमीना सतियों को भी गर्व दूर कर दिया है, वे राधिका जी कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया है। हे मन, तुम उनका सेवा भजन करो। अब कहते हैं जिसे इनको कैसे प्राप्त करेगा, अंतिम उपदेश। समम श्री रूपेण स्मर विवस गिर्भित राधा गिर्भित ब्रजे साक्षात सेवालवन विदय तदगुण तदिज्ञाख्यान ध्यान श्रवण नति पंचामृतमिदम भय नित्यांग गोवर्धन मनु दिनम तंग भजमन। हे मन, तुम ब्रज में अपने गणों या परिकरों के सहित स्मर विलास परायण राधा गिरधारी जी की साक्षात सेवा प्राप्ति करने के लिए तुमको एक उपाय बतलाता हूँ, विधि बतलाता हूँ, उस विधि का पालन करो। उनकी पूजा गण के सहित मैंने सिदाम सुबल ललिता विशाखा इत्यादि से परिवेष्टित श्री राधिका जी उनकी सेवा पूजा करो। दास सख्य पार्सल और सिंगार रस से जिसमें से तुम्हारा लोभ है उसके अनुसार में तुम उनकी पूजा करो, जो जिसके लिए उचित है। उसको कैसे करेंगे, रूप के साथ में मथुरा के आचार्य रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में राधानुगीय मधुर रस के साधकों के लिए जो रीति प्रदर्शित की है उसको बतला रहे हैं। श्रद्धा विशेषता प्रीति श्री मूर्ति अंग ही से बने श्रीमदभागवतार्था नाम अस्वादौ रस कई सह स्वजातीयाशे साधौ संग स्वतौ वरे नाम संकीर्तनम श्रीमन मथुरा मंडली स्थिति अंगा नाम पंचकाश्च पूर्व विलिखित निखिल श्रेष्ठ बोधाय पुनरप्यतन। रूप गोस्वामी जी भक्ति स्वामी सन ने 64 अंगों का जो वर्णन किया उसमें से 5 का अंतिम में वर्णन करते हुए पुनः कह रहे हैं कि मूर्ति की सेवा करो राधा कृष्ण की, रसिकों के साथ में भागवत का स्वादन करो और स्वजातीय भाव वाले स्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों का संग करो। नाम संकीर्तन श्रेष्ठ श्री मथुरा मंडल में ब्रज में बात करना, नवदीप में भी बात करना, इन 5 अंगों का पहले उल्लेख किया जा चुका है किंतु फिर भी ये उल्लेख करके बतला रहे। इज्ञा अर्थात से विग्रह का अर्चन, हरिवासर एकादशी पालन, तुलसी माला और तिलक धारण करना, चरणामृत महाप्रसाद सेवन करना, व्रत आदि तुलसी की सेवा इसके अंग के अंतर्गत है, ये इज्ञा के अंतर्गत। और आख्या आख्या माने पाठ माने भक्ति शास्त्र पाठ, भक्त मंडली में हरि कथा श्रवण और कीर्तन जैसे हम लोग अभी कर रहे, और नाम रूप कुलीला इत्यादि का कीर्तन ये आख्या कहलाता है। ध्यान, ध्यान माने राधा कृष्ण और उनके भक्तों का ध्यान, उनके लीलाओं का ध्यान, मन से अनुसंधान का नाम करना का नाम है स्मरण, मन ही मन में चिंतन करना, और रूप का स्मरण करना, पहले नाम रूप फिर गुण, इस क्रम से उनका ध्यान होना चाहिए, फिर लीला का स्मरण पीछे। स्मरण पांच प्रकार का, बाधाओं के साथ में स्मरण करने का नाम स्मरण है। सब विषयों से मन को चित्त को हटा करके साधारण रूप में हरि के नाम रूप गुण इत्यादि के चित्त को स्मरण करने को धारणा कहते हैं। विशेष रूप से नाम रूप चिंतन को ध्यान कहते हैं, जबकि वो विषय में नहीं जाए तब। अमृत धारा की भांति अविच्छिन्न रूप से स्मरण जब होने लगता है तो उसको ध्वन स्मृति कहते हैं, और जिस ध्यान में केवल ध्येय वस्तु की स्मृति होती है और कुछ नहीं होता तो उसको कहते हैं समाधि। श्रवण शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान नाम रूप गुण लीला इत्यादि को श्रवण को श्रवण कहते हैं। प्रतिदिन शाम को सत्संग में भागवत चैतन्य चेतन इत्यादि ग्रंथों के श्रवण की व्यवस्था का नाम ही श्रवण है, अर्थात इन्हीं ग्रंथों को, भक्ति के ग्रंथों का श्रवण करो। नति नमस्कार, भगवान के विग्रह के समीप, भगवान के लीला जहाँ हुई है उस स्थलों में, जैसे हम लोग जहाँ जहाँ गए उनका नमस्कार। भगवान के स्मरण उद्दीपक स्थानों में दर्शन करते समय साष्टांग प्रणाम करना, ये सब नति। वैष्णव जहाँ भजन करने बैठे उन वैष्णवों का नाम, स्थानों का नाम ले लेकर के और सबको प्रणाम कर रहे हैं साष्टांग होकर, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी। गोवर्धन का भजन कैसे करेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी बात लक्ष्य करके सबके लिए कहा है, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी दास गोस्वामी को गोवर्धन खिला दी और गुंजा माला दी, तो ये कह रहे हैं सौ कल्प तरु में, महाप्रभु का श्लोक है ये गौरांग सौ कल्प तरु 11 श्लोक में, महासंपत संपत आराधि पति समुद्भृत कृपया स्वरूपे जस्वीय कुजन अपिमान नष्ट मुद्दित पुरो गुंजाहारम प्रेमपि स गोवर्धन शिला ददौ में गौरांगो हृदय उदयन मा मदयति। मैं घोर पतित अत्यंत घृणित होने पर भी रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र कभी भी घृणित नहीं रहा, दिन ही नहीं रहा, बचपन से ही भगवान का भजन करते हैं तो भी कह रहे हैं, यही उनकी तृणा गति सुनिश्चिता है, वो ऐसा ही समझते हैं, इसलिए कह रहे हैं अपने को दिन ही, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी इत्यादि कहते हैं। जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि सचमुच में भजन नहीं होता, हम दीन ही हैं, पतित हैं ऐसा मालूम पड़ता है, शुद्ध हरि नाम नहीं होता, नामाभास भी नहीं होता। जब नाम करते हैं तो मन कहाँ रहता है, कीर्तन करते हैं तो मन कहाँ रहता है, इसलिए सच हम लोगों की ऐसी, इसलिए उन लोगों ने भी ठीक कहा है, वो उपलब्धि करते हैं, तो कहते हैं कि मैं घोर पतित अत्यंत घृणित होने पर जिन चैतन्य महाप्रभु जी ने अहत की कृपा द्वारा विशाल वैभव और भार्या इत्यादि से हमारा उद्धार कर लिया, नहीं त्यागी लोग फिर भार्या की तरफ में दौड़ते हैं, और ये कहा इनको विशाल भार्या सुंदरी और विशाल राज्य मिल करके और चट्टी की भांति उसका प्रत्याग कर दिया, कैसे कहे चैतन्य महापुरुष की कृपा ने हमको उद्धार कर दिया और मुझे अपने प्रिय स्वरूप दामोदर जी के हाथों में सौंप दिया, स्वरूप जी की कृपा हमारे ऊपर में हुई और बड़े प्रसन्न हुए हमको वो सौंप करके, मुझे अपना प्रिय पात्र जान करके गुंजाहार और गोवर्धन दिया, वे गौरांग देव मेरे हृदय में उदित होकर के मुझे आनंदित करें। गोवर्धन शिला साक्षात भगवत वस्तु है। वो कहते हैं कि गिरिराज जी को देकर के गिरिराज जी के चरणों में हमको समर्पित कर दिया, कृष्ण के चरणों में, और गुंजामाला देकर के राधा जी के चरणों में समर्पित कर दिया। दास गोस्वामी गोवर्धन के समीप राधा कुंड में निवास करते थे। वे कभी दूसरी जगह नहीं जाते थे, बस वहीं पर रहते थे। उसी प्रकार में गोवर्धन बात कदापि नहीं छोड़ सकता, ऐसी पक्की निष्ठा होना भी गोवर्धन का भजन है। साधारण साधकों के लिए गोवर्धन भजन के दो अर्थ है, यह कि गोवर्धन शिला को सेवनीय विग्रह जान करके पूर्वोक्त रीति से सेवा पूजा करनी चाहिए, और दूसरा गोवर्धन नामक लीला स्थल और उपलक्षण सारे ब्रजमंडल में बात करके राधा कृष्ण जुगल की आराधना करें। दो तरह, एक तो गोवर्धन में बात और एक कृष्ण की जितनी लीला स्थलियां हैं वहां पर रह करके वैसा ही भजन करना चाहिए। इसके द्वारा गोस्वामी द्वारा कथित मथुरा मंडल में बात करना भक्ति का प्रधान अंग है। नीति शब्द से यहाँ केवल विधि मार्ग को नहीं समझो, वैदिक भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं वो रूप गोस्वामी द्वारा प्रदर्शित विधियों के अनुसार में भजन करेंगे। जो रागानुराग के भजन करने वाले हैं वे रूप गोस्वामी द्वारा प्रदर्शित राग नीति का अवलंबन करेंगे। फिर वो कह रहे हैं अंत में मन शिक्षा एकादत ब्रह्मे तन मधुरे गिराज गायत उच्च समधिगत सर्वार्थ तथई सब सजूथ रूपानुग यह भवन गोकुल बने जनो राधा कृष्ण अतुल भजन रत्नम सलभते। जो लोग सजूथ रूपानुग माने जूथ कौन है, जी गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और एकदम नीचे तक ये सब जूथ है। गोकुल वन में सजूथ अनुगत होकर के गोकुल वन में अर्थात ब्रजमंडल में गोवर्धन करने के बात पर मन को शिक्षा देने वाले अत्यंत सुंदर इन 11 श्लोकों का मधुर वाणी से उच्च स्वर से कीर्तन करना, जो गायन करते हैं और राधा कृष्ण के अतुलनीय भजन को वो शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जैसे भजन किया है ठीक उसी प्रकार से उनका भजन करना चाहिए। यही समस्त शिक्षाओं का सार इन्होंने बताया। अभी हम लोग परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा यदि कहो तो वहाँ पर दामोदर मंदिर खुला होगा या अभी नहीं, अभी रहने दो, जिनको दर्शन करना है वो दर्शन कराएं, हम लोग अभी मुंडन इत्यादि करके अभी तैयार होंगे, फिर और सब काम करेंगे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कार्तिक महीना आज पूर्ण हुआ। हम लोग इस वर्ष में हम लोगों का सौभाग्य रहा कि 5 महीने का चातुर्मास किया। चार महीना चातुर्मास है किंतु एक महीना अधिक हुआ, ये हम लोगों का सौभाग्य है। इसके अंतर्गत में हम लोगों ने पूरी जगन्नाथपुरी में विशेष रूप से राय रामानंद जी का संवाद वहां पर हम लोगों ने अनुशीलन किया, महाप्रभु और राय रामानंद के बीच। और यहाँ कार्तिक के महीने में ब्रजमंडल की परिक्रमा के साथ साथ में हरि कथा भी हुई, विशेष करके हम लोग 8-9 दिन वृंदावन में रहे। इसमें हम लोग रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के विचारों को भी संक्षेप में कुछ बतलाने की चेष्टा की। मूल तात्पर्य क्या है? इस महीने में जो कुछ हम लोगों ने किया या चातुर्मास में या अपने जीवन में हम लोग जो कर रहे हैं, मूल तात्पर्य है भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, हम लोग निष्कपट हो सकें। विशेष करके रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में और रघुनाथ दास गोस्वामी ने मनस शिक्षा में जो बतलाया है, इसको हम लोग सामर्थ्य के अनुसार में आचरण कर सकें। किंतु हम लोग मनस शिक्षा में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा अनुशीलन किया, उसमें एक बात प्रमुख रूप में हम लोगों ने देखा, यदि काम क्रोध लोभ मद मोह इत्यादि हमारे गले को पकड़ रहे हैं और मुझे मार रहे हैं, तो उनसे रक्षा के लिए और भगवत भक्ति के लिए हम लोग असहाय हैं। यदि उनके सामंत अतुलम, उनके जो भक्ति के बकासुर को वध करने वाले कृष्ण की भक्ति के पथ के जो रक्षक हैं, उनको पुकार सकें और वो कृपा करके हमारे ऊपर में हम लोगों को अनुग्रहित कर सकें, तो हम लोगों का दोनों काम हो सकता है। इन अनर्थों से छुटकारा भी हो सकता है और कृष्ण भक्ति भी हो सकती है। विशेष करके वैदिक भक्ति साधारण रूप में यह हो सकती है, कोटि कोटि जन्मों के सुकृति से भक्तों का संग होता है, भक्तों के संग से भक्ति में प्रवृत्ति होती है। किंतु रागानुगा भक्ति में प्रवृत्ति होना बहुत ही दुर्लभ है। कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी ऐसे संत महापुरुषों का, महत्पुरुषों का संग होना बड़ा कठिन है और वैसी भक्ति होना भी बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। साधारण रूप में हरिनाम करना या 64 प्रकार की भक्तियों में से 9 प्रकार को करना, ये साधारण बात है, इसमें भी सुकृति की आवश्यकता है, ठीक है। किंतु ऐसे कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी रूप और रघुनाथ और चैतन्य महाप्रभु के जो आचरित और प्रचारित जो प्रेम धर्म है, भाई उसमें मति होना बड़ा भारी कठिन है। किंतु हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग वृंदावन में उन स्थानों पर हम लोग गए, वैष्णवों के साथ में गए, जहां पर प्रेम उछलता है। जैसे बतलाया एक श्लोक में, श्री बिंदा विपनम सुरम्न वक्तु सुमान श्री गोवर्धन साराशा स्थलिका अपि अलम रश्मैं किं तावत् अन्नस्थ स्थलै। वृंदावनम सुरमान गोवर्धन सारा सा स्थलिका पलमरसमयी किम तावत अन्न स्थल जस्यापि अंशलवेन नारहत संबंध मुकुंद तत् प्राणोद्धातिक प्रेव दैतम तत्कुंडम में वास्ते। रूप गोस्वामी ने कहां लिखा है ये? उपदेशामृत में लिखा है ना? और कहीं? और कहीं? रघुनाथ दास गोस्वामी, वो देखो कैसे कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो वैसा भक्तिवान नहीं है ऐसा लिख नहीं सकता, उसका हृदय कांप उठेगा। जैसे जयदेव गोस्वामी का हाथ और हृदय कांप उठा ये लिखने में कि मोर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पदपल्लवम उदार, देही पदपल्लवम उदार। ये कहने में कांप गया, उसने हाथ से नहीं लिख सके, किंतु कृष्ण ने बिना ही चक्के बड़ी प्रसन्नता से और उसको उसमें लिख दिया। ऐसे रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ही ऐसा लिख सकते हैं, नारद जी के लिए भी ऐसा लिखना संभव पर नहीं है। ये इस श्लोक में कहते हैं सिबिंदाविपनम सुरम्यम अपि, वृंदावन सुरम्य है। कैसा सुरम्य है? राष्ट्रस्थली है, यहां पर चंद्र की गति रुक गई, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण की गति रुक जाना ये बड़ी बात है। गोपियों के भावों को देख करके, कृष्ण मुग्ध होकर के उनकी गति रुक गई, और कृष्ण का मन कैसा हो गया? जैसे गोपियां करती हैं एक जगह, ये गोपियों का चित्त कृष्ण के लिए रथ वाहन बन गया। धन्या उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम के चित्त के लिए ये ज्ञान वाहन बन गई। अर्थात सब समय उरुक्रम उनके चित्त में दिमाग में बैठे रहते हैं, आरूढ़ रहते हैं। जादोहने वहनने मथनो फलेप प्रेंखाखना अभ्युदित ओखन मार्जनादौ गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रुकंठा धन्यक्रम चित्त जाना। वो गोपियां घर में लीप पोत रही हैं, किंतु उरुक्रम उनके चित्त में चढ़े हुए हैं, सब समय उनका चिंतन कर रही हैं, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इस समय कहाँ होंगे। अभी कोई गोपी होगी ना, अभी जावट में बैठी रही होगी और चिंता क्या कर रही होगी, कृष्ण कहाँ मिले, कैसे मिले, तो वही सब चिंता कर रही हैं गोपियां। हाथ में पोतने के लिए कुछ रखा है और हाथ ही में रह गया। सास ने कहा, ये क्या कर रही, लिपटी क्यों नहीं। ओखन मार्जन आदौ, मार्जन कर रही है, मुसल से कोई चीट कूट रही है, बच्चों को थपकी देकर के सुला रही हैं। सब समय उरुक्रम चित्त जाना, उनके चित्त पर चढ़े हुए हैं कौन, उरुक्रम। इसलिए बीच बीच में हाथ जहां का तहां बंद हो जाता है। प्रातः ब्रजात ब्रजतः अविशक्त सायं, कृष्ण सवेरे गोचारण के लिए चले, उनका मन, गोपियों का मन कहां चला जाता है, जहां पर कृष्ण जा रहे हैं गोचारण में उनके पीछे पीछे वहां चला जाता है। घर में है, शरीर है, और जब वहां से लौटते हैं ना, गोपियां भी होकर के अपनी आंखों को साफ देने लगती हैं, और ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने ऐसा आंख एक दो क्यों बनाया, पलके उसमें क्यों दी। जब कृष्ण आ रहे हैं, तृप्ति नहीं हो रही उनकी देखने से, ऐसी गोपियां की स्थिति है। तो ये सब काम कर रही हैं और चित्त में आरूढ़ हैं कृष्ण, इसलिए गोपियां वो सहज समाधि में है, सब चल रही है, फिर रही है, खा रही, किंतु समाधि में है वो, साधारण आदमी नहीं समझ सकते। इसलिए कहते हैं कि ये वृंदावन में रास इत्यादि हुई, सबसे श्रेष्ठ लीलाएं कहा तो है, किंतु भाई गोवर्धन इनसे श्रेष्ठ है। वृंदावनम सुरम्यम अब तस्त्रीमान स गोवर्धन सारास्था स्थली का अब अलम रसमय किंतावत अन्नस्त स्थल। गिरिराज गोवर्धन ने बासंती राज, और यहाँ पर शारद शारदीय राज, ये पंचायती राज, और वो राधा जी का एकांतिक राज, जिसमें राधा जी छोड़ करके चले गई, और कृष्ण ये बरज बिपिन ने अभी जो जमुना रकुले मंच मनोहर शोभित, ये सब बासंती राज का, उसमें बासंती उसमें शब्द का प्रयोग किया है, वो बासंती रखता है जिसमें कृष्ण उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये गोवर्धन इसे वृंदावन से श्रेष्ठ है। पंचायती राज माने क्या, इसमें साधन सिद्धा है, इसमें श्रुतियां वाली हैं, मुनिचरी हैं। अब इनके अंदर में कुछ कसाय है, नित्य सीधा जैसी नहीं हुई, ये रात में नहीं प्रवेश कर सकी, उनको उनके पतियों ने रोक लिया। पतियों ने नहीं रोका, किसने रोका? कृष्ण ने रोका। किसके द्वारा रोका? जोग माया के द्वारा वहां पर रोक दिया। अभी नहीं, अभी कच्ची है, अभी तोड़ लेंगे ना तो उसमें खटापन आ जाएगा, वो सावर हो जाएगा। अभी पका नहीं है, इसको अभी थोड़ा सा ये गेहूं में या किसी चीज में बोरे में लपेट करके रखो और गर्म हो जाएगा ना तो ये पक जाएगा। इसलिए कृष्ण ने योग माया के माध्यम से उनको रोकवा दिया। ऊपर से मालूम होता है जिनके पतियों ने रोका, पतियों ने नहीं रोका। अभी हमको भजन में कुछ गड़बड़ी होती है, माता पिता भाई बंधु गुरुजन और ये सब लोग हमको मना करते हैं कुछ करने के लिए। क्यों? ये कृष्ण की व्यवस्था है, इन लोगों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कृष्ण ने योग माया के द्वारा उनको परिपक्व और करने के लिए, सुस्वादु बनने के लिए ऐसा किया, रुकवा दिया। और जब तीव्र बृह ताप के द्वारा अशुभ दूर हो गया और आलिंगन के द्वारा जब अपने हृदय में लेकर के कृष्ण का आलिंगन किया, उसे जो उनके जितने शुभ थे वो क्षीण मंगला ये हो गई, तो कृष्ण ने उनको झट उनको आलिंगन करके अपने यहां राष्ट्र में उनको दे दिया। तो ये सब जो अभी हैं, इनका भी कसाय बाकी था, इसमें साधन सिद्ध है। ये वृंदावन में मिली थी कृष्ण के साथ में, और वहां पर क्या, वहां पर नित्य सिद्धा या वैसी सब वहां पर गिरिराज गोवर्धन में, इसलिए स्वच्छंद रूप में वहां पर आश हुआ, वहां पर कोई ऐसी बाधा नहीं। वहां पर स्वच्छंद रूप में कृष्ण ने जगत को यह दिखलाया, नारद इत्यादि भक्तों के लिए दिखाया कि श्रीमती राधिका ही हमारी श्रेष्ठ प्रिय है। वृंदावन में वैसा में छिप करके गए, और वहां पर छिप करके नहीं, सभी गोपियां सामने खड़ी थी, रास हो रहा था, और कृष्ण ने कहा तुम्हार लागी मोर बरज बास, तुम कहां गई? और बंसी में ध्वनि करने लगे और सब गोपियां देख ये क्या हो गया, किसी को नहीं देखा उन्हें, वहां से छिप करके कृष्ण आए ना यहां पर, हाँ वृंदावन में छिप करके, और वहां पर छिप करके नहीं सबके सामने देख करके चले गए। यही महाप्रभु जी को उत्तर दिया था किसने, राय रामानंद ने दिया था। ये सब बातें यदि ऐसे महापुरुष नहीं प्रकट कर सकते, नहीं करते, तो हम लोग कुछ समझ ही नहीं सकते थे इसके विषय में। बहुत ही दुर्लभ रत्न है ये सब, ये सब भक्ति के विचार है, ये सब सुंदर भक्ति के विचार। ये राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु में ये सब विचार हुआ, इसलिए हम लोग कुछ कुछ थोड़ा सा समझने की कुछ ये गुण हुआ उनके वजह से, हम लोग उनके ऋणी हैं। तो गुरुराज गोवर्धन ने बासंती रात में राधा जी की महिमा उन्होंने प्रकाशित की, किंतु नरहत एक लव के बराबर भी, ये वृंदावन रसमय स्थान होने पर भी एक लव मात्र भी राधा कुंड के महिमा के पासंग में, ये वृंदावन में नहीं आएगा ये रसमय स्थान होने पर भी, तो और लोगों की स्थानों की तो बात नहीं है। अब फिर से देखो इसको, शिविंदा विपनम सुरमनम तत्मान स गोवर्धन सहारा सा स्थलिका, वो राशा स्थलिका होने पर भी किं तावत अन्न स्थल, और सब स्थानों की तो बात छोड़ दो, क्या ही बात है, वो तो इसके सामने ही लगी। लौ मात्र भी ये वृंदावन भी राधा कुंड की क्षमता नहीं कर सकते, इतना बड़ा उन्नत स्थान है राधा। तो ये सब गुस्सा सब वो वहां पर कह रहे हैं, पहला जो श्लोक बतलाया था वृंदा बिपिन के लिए, तो हम लोग इन स्थानों में गए, राधा कुंड में भी गए। जावट को साधारण मत समझना, जावट और इसमें बरसाना में कौन श्रेष्ठ है? हमारे विचार से, हम लोगों के विचार से, गौड़ियों वैष्णवों के विचार से जावट अत्यंत श्रेष्ठ है। हम लोग कहां रहेंगे? राधा कुंड में जाएंगे, किंतु रात में कहाँ रहेंगे? जावट में रहेंगे श्रीमती जी के साथ, जैसा श्रीमती जी करते हैं। इसलिए जावट को साधारण चीज मत समझना। इसलिए जितने हमारे रूप गोस्वामी से लेकर के ललिता जी, विशाखा जी और सब लोग, ये कहाँ रहते हैं? ये जावट में उनको रहते हैं, और वहां से राधा कुंड में या वृंदावन में मिलन मिलन करने के लिए आते हैं। इसलिए हम लोग वहां पर भी गए, कोकिल वन में इत्यादि में गए, राधा कुंड में गए, सूर्य कुंड को जरा दूर से प्रणाम कर लिया, वहां पर नहीं जा सके। इतने आदमी को जाने के लिए बड़े इस बस में हम लोग वहां पर नहीं जा सकते, नहीं तो हम लोग वहां पर भी जाते। करीब करीब ये जो स्थान हम लोग गए, किस लिए गए? वही नारद जी का उपदेश का समय याद रहता है, कृष्ण के यहाँ जो वर मांगा था, जो थोड़ी सी लालसा हो, थोड़ी सी भी लालसा हो, रुचि हो, अर्थात लोग थोड़ा सा हो किसी को अंदर में, और उस स्थानों में जाकर के वहां पर प्रणाम करके वहां की धूली यदि उठा करके अपने अंगों में लगाए तो क्या होगा? और यदि लालसा करे, ओह यहाँ पर जो लीलाएं हुई थी उसमें हमारा लोग उत्पन्न हो जाए, जरूर सुनता। यदि वैसी कथाएं यदि हो रही हैं तो वो कथाओं के श्रवण और कीर्तन करने से, जो कीर्तन करे और जो श्रवण करे लीला कथाओं का, नारद जी ने कहा जी उनको भी वही प्रेम हो गोपी हो जैसा, तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए जी, बहुत अच्छा।